नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बेहतरीन समन्वय ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने गोवा और कारवार में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के साथ दीपावली मनाई। कहा, आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का प्रतीक। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन आज। 122 सीटों के लिए अब तक 1066 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। यमन में एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में आग लगने के बाद 23 भारतीय नाविकों को बचाया गया। और खेलों में, भारत ने वियतनाम में एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर विवश कर दिया था। प्रधानमंत्री ने ये बातें आज गोवा और कारवार तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपावली मनाते हुए कहीं।
भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के सशस्त्र बलों की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का विशाल प्रतीक है।
जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। हमारी नेवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि वो नौसैनिकों के साथ ये पवित्र त्योहार मना रहे हैं।
हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ ग्लोबल साउथ के सभी देश भी तेजी से आगे बढ़े, और इसके लिए हम महासागर मैरीटाइम विजन, उस पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हम कई देशों के विकास में उनके पार्टनर बन रहे हैं। दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज ही पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का अंतिम दिन भी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रीय जनता दल द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद महागठबंधन के घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और सीपीआई माले तथा 2 अन्य वामपंथी पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने 143, कांग्रेस पार्टी ने 60 और सीपीआई माले ने 20 सीटों पर, जबकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। 2 अन्य वामपंथी दल सीपीआई और सीपीएम भी 10 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों की घोषणा के बाद महागठबंधन में 12 से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दोस्ताना संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की कहलगांव और सुल्तानगंज सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। कांग्रेस की कई सीटों पर सीपीआई माले और सीपीआई ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रकाश का पर्व दीपोत्सव आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दीपावली पर मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थलों को दीपों तथा रंगीन रोशनियों से सजाया गया है।
दीप ज्योति परब्रह्मः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ज्योति पर्व दीपावली आज धार्मिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आध्यात्मिक रूप से ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। हिंदू सनातन संस्कृति में दीपावली से संबंधित कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इस अवसर पर अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीपक जलाए थे। दीपावली को सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी विशेष रूप से मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे भगवान महावीर के मोक्ष के रूप में मनाते हैं और सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। हमारे देश में कुछ कामगार ऐसे हैं जिनकी दीपावली हमसे ही है। आकाशवाणी की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रार्थना की है कि ये पर्व सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दीपावली अज्ञान पर ज्ञान के विजय का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कामना की है कि ये पर्व सभी नागरिकों के जीवन को सद्भावना, प्रसन्नता और समृद्धि के प्रकाश से जगमगाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। मुंबई में दीपावली धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में 5 दिनों तक मनाया जाने वाला दिवाली का त्योहार यहाँ की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा से जुड़ा है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वो ऐसे पटाखों का चयन करें जिनसे कम से कम ध्वनि और वायु प्रदूषण हो। दिवाली और छठ त्योहार के लिए मध्य और पश्चिम रेलवे ने 1800 से अधिक विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
तेलंगाना में हैदराबाद में भी दीपावली पर लोगों में उल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है। मिठाइयों, उपहार, आभूषण और आतिशबाजी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ है। हैदराबाद में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरों और कार्यालयों को रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने लोगों से दीपावली पर स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ बीती रात आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दिवाली तथा छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों के लिए भारतीय रेल की तैयारियों की समीक्षा की। श्री वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि त्योहारों के अवसर पर दिल्ली के स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में रेलवे ने उनकी सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि होल्डिंग एरिया और टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाए जाने से यात्रा आसान हो गई है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने लोगों से फर्जी वीडियो प्रसारित न करने की अपील की, क्योंकि इससे यात्रियों में भ्रम फैलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच रहा है। इस श्रृंखला में पेश है संपत्ति क्षेत्र को मजबूत बनाने में जीएसटी सुधारों की भूमिका पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों ने इमारतें बनाने संबंधी आवश्यक सामग्रियों को अधिक किफायती बनाकर और समग्र परियोजना लागत को कम करके रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। सीमेंट पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे देश भर में घरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण की लागत कम हो गई है। इसके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे फर्श और फिनिशिंग कार्यों की लागत में कमी आई है। इसी प्रकार रेत चूने की ईंटों पर अब 12% की बजाय 5% की कम दर लागू की गई है, जिससे छोटे पैमाने के निर्माण कार्य अधिक किफायती हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में भरूच निवासी कृतार्थ पटेल ने कहा,
सरकार द्वारा सीमेंट पर जीएसटी घटाने जाने पे बिल्डरों और कॉन्ट्रैक्टरों को बहुत फायदा हुआ है। खास तौर पे सरकारी ठेके लेने वाले यह जीएसटी रिफॉर्म्स बिल एक बम्पर योजना साबित हुई है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं।
रियल एस्टेट क्षेत्र में इन सुधारों ने आवास और बुनियादी ढांचे के विकास को और अधिक किफायती बना दिया है। बिल्डरों और नागरिकों दोनों पर वित्तीय बोझ कम करके सरकार के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्ने की कीमतों में 15 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगेती गन्ने की किस्मों का मूल्य 400 रूपये से बढ़ाकर 415 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पछेती किस्मों का मूल्य 393 रूपये से बढ़कर 408 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर में 0.6% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 541 अंक बढ़कर 84,494 और निफ्टी 173 अंक बढ़कर 25,883 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर पीएसयू बैंक, आईटी पैक और तेल तथा गैस में खरीदारी देखी गई, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के शेयरों में रुझान के उलट गिरावट देखी गई। यमन के अदन तट पर कैमरून ध्वज वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट की घटना के बाद चालक दल के 23 सदस्यों को बचा लिया गया है। ये सभी सदस्य भारतीय हैं। ये घटना कल उस समय हुई जब जहाज अदन तट से लगभग 113 समुद्री मील की यात्रा कर दक्षिण अफ्रीकी देश जिबूती जा रहा था। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। यूरोपीय संघ नौसेना बल के रक्षात्मक समुद्री अभियान एस्पाइड्स के अनुसार चालक दल के 2 सदस्य अभी भी लापता हैं। एक सदस्य के एमवी फाल्कन में फंसे होने की आशंका है। यमन के हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक केंद्र पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र के 24 कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। यूएन के प्रवक्ता जीन आलम ने कहा कि कर्मचारियों को सना के दक्षिण पश्चिमी हादा इलाके में स्थित एजेंसी के परिसर में रखा गया है। सूत्रों के अनुसार ये कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम, बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ और मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में कम से कम 5 यमनी नागरिक शामिल हैं। भारत ने वियतनाम के हाई फोंग में एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते हैं। पुरुषों की भारतीय टीम ने लाइटवेट डबल स्कल, क्वाड्रपल स्कल और सिंगल स्कल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की लाइटवेट क्वाड्रपल स्कल, डबल स्कल और एट स्पर्धा में भारत ने नौकायन खिलाड़ियों ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की लाइटवेट फोर स्पर्धा टीम और लाइटवेट डबल्स में महिला जोड़ी ने भी रजत पदक जीते हैं। लाइटवेट पुरुष डबल्स टीम और महिलाओं की एट स्पर्धा टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किए। आईसीसी महिला विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच नवी मुंबई में 3 बजे से खेला जाएगा। कल रात इंदौर में भारत को इंग्लैंड से 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के 289 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कल बहरीन में कुराश में कांस्य पदक जीता। लड़कियों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में 6 पहलवानों के बीच हुए मुकाबले में उन्हें क्वार्टर फाइनल में बाई मिली और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की डी तुर्सुनोवा से हार का सामना करना पड़ा। कुराश कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुई थी। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। माहे, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और कराईकल में अगले 2 दिन में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। जापान में जापान इनोवेशन पार्टी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने पर सहमत हो गई है। जापान इनोवेशन पार्टी ने कहा कि वो एलडीपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कल नए प्रधानमंत्री चुने जाने के समय कट्टरपंथी रूढ़िवादी नेता साने ताकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बेहतरीन समन्वय ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। प्रधानमंत्री ने गोवा और कारवार में आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के साथ दीपावली मनाई। कहा, आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का प्रतीक। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के 2रे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। और खेलों में भारत ने वियतनाम में एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।